नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न बीमारियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया करते हैं। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने निमोनिया के विषय में जाना। आज हम देखेंगे फेफड़ों और फेफड़ों से संबंधित रोगों के विषय में डॉक्टर लुका क्या कहते हैं।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फेफड़े हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम इसके द्वारा सांस लेते हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव है ही नहीं। हम शरीर के अन्य अंगों के समान अपने फेफड़ों की भी चिंता नहीं करते हैं जब तक कि हमें सांस लेने में कठिनाई ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सांस फूले। यदि आपको कभी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है तो आप जानते हैं कि आपको कैसी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मित्रों, फेफड़े हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं हैं, यदि हम ठीक से सांस न ले पाएं तो हम चुस्त नहीं रहेंगे और अधिक काम भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मित्रों, जीवन बहुत सीमित हो जाएगा। ऐसा क्यों है? फेफड़े कैसे काम करते हैं, आइए हम देखते हैं। फेफड़े हवा से भरते हैं। फेफड़े पैर के समान नहीं कि उनमें मांसपेशियां और हड्डियां हों। फेफड़े बड़े पाइप के समान हैं जो बाहर से हवा लेते हैं। इन पाइपों का भी नाम है, परंतु हमें अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं है। ये पाइप हमारी उंगली के समान मोटे से लेकर इतने पतले होते हैं कि इन्हें देखने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म नलियों के अंत में वह स्थान है जिसे हम देख नहीं सकते और उस स्थान पर संपूर्ण कार्य होता है। मित्रों, हमारा शरीर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। यह कार्य असाधारण परंतु अति सरल है। हम सांस लेने में जो हवा भीतर लेते हैं उसमें से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। शरीर फेफड़े के उन छोटे छोटे स्थानों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है। यद्यपि यह प्रक्रिया साधारण सी है, इसके प्रभाव हमारे जीवन पर अनेक हैं। ये प्रभाव क्या हैं? मित्रों, हमारे शरीर तो काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे खून में घोलते हैं और खून उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे तथा पैर, वरन शरीर के हर भाग में पहुंचाता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह मर जाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो हमें विचार करने पर विवश करेंगे कि ऑक्सीजन जिसे हमारे फेफड़े हवा से निकालते हैं वह कितनी महत्वपूर्ण है। मित्रों, मान लें कि मैं या अन्य कोई आपके पैर पर कसकर रस्सी बांध दे और उसे कई मिनट या कहा जाए घंटे बंधा रहने दें, तो आपके पैर का क्या होगा? पहले तो वो लाल होगा, फिर नीला पड़ जाएगा और धीरे धीरे मरने लगेगा। यदि उसे एक दिन तक ऐसे ही रहने दिया जाए तो वह पूरी तरह मर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? मित्रों, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके बिना वह मर जाएगा। यही नहीं, हमारा संपूर्ण शरीर कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है जो अम्ल है, और किसी भी अम्ल के समान यह भी विनाशकारी है। इसलिए जब यह तत्व उस पैर में रुकता है तो वह पैर की मांसपेशियों और अन्य अवयवों को नष्ट करना आरंभ कर देगा। अब क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती ही जा रही है, इस कारण यह होता है। मित्रों, शरीर में इन दोनों गैसों की उचित मात्रा होना अति आवश्यक है और आपके जीने के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण भी है। यह फेफड़े ही तो हैं जो इन दोनों गैसों का हमारे संपूर्ण शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। मित्रों, दूसरा उदाहरण है दिल का दौरा पड़ना। हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। यह कैसे होता है? हृदय शरीर के किसी भी अंग की नाई एक अंग है और उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हृदय में भीतर और बाहर खून की नलियों से खून प्राप्त होता है। यदि ये खून की नलियाँ अवरुद्ध हो जाएँ तो हृदय को खून आपूर्ति में कमी आ जाती है, अर्थात हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि खून द्वारा ही ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंचती है, और यदि हृदय को खून द्वारा ऑक्सीजन ना मिले तो वो मरने लगता है। यहाँ भी वही होता है, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक, इससे विनाश होता है। हृदय की धमनियाँ आयु बढ़ने पर अवरुद्ध होने लगती हैं। कभी कभी युवाओं में भी ऐसा होता है। फिर से वही बात आती है मित्रों, कि फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन का उचित प्रबंध करते हैं जिससे कि शरीर के प्रत्येक अंग को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन मिलती है। मित्रों, तीसरा उदाहरण है ऑक्सीजन की कमी के कारण लकवा मारना। यहाँ भी वही होता है जो हृदय के साथ हुआ। अंतर केवल यही है कि इसमें मस्तिष्क को खून पहुँचाने वाली खून नलियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। यदि मस्तिष्क में खून के द्वारा ऑक्सीजन ना पहुँचे तो जिस भाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वह मरने लगता है। यदि वह भाग चलने और बात करने का उत्तरदायी है तो मनुष्य चल नहीं पाएगा और बात नहीं कर पाएगा, और यदि थोड़ा बहुत कर भी पाएगा तो पहले जैसा नहीं। फिर वही बात आती है मित्रों कि फेफड़े हमारे शरीर को संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए फेफड़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन हवा से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं कि अम्ल की मात्रा शरीर में ना बढ़े। सच में हमारे शरीर में फेफड़े अद्भुत अंग हैं। प्रिय मित्रों, बाइबल भजन संहिता में 3000 वर्ष पूर्व राजा दाऊद के वचन व्यक्त करती है कि हमारा शरीर अद्भुत रीति से रचा गया है। भजन संहिता कविताओं का संग्रह है जिन्हें दाऊद ने रचा है और जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। इसमें लिखा है भजन संहिता 39 उसके 4, 5 और 7 में, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? मित्रों, वो चाहता है कि हम उसमें हमारा विश्वास आधारित रखें। दाऊद ने कहा, मेरी आशा तुझ में है, धन संपत्ता में नहीं, बड़े नाम में नहीं, सौभाग्य में नहीं, घर परिवार में नहीं, प्रतिष्ठा में नहीं। भजन संहिता 1 उसके 3 और 7 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपनी सृजन शक्ति और अपने चरित्र की महानता के कारण हमें महान आशा मित्रों प्रदान करता है। इस कारण यद्यपि हमारे जीवन अल्पकालीन है, हम पर अंतर नहीं पड़ता है। हमारे सांसारिक जीवन में, इस अल्पकाल में और हमारे मरने के बाद भी परमेश्वर हमें महान आशा बंधाता है। मित्रों, आशा महत्वपूर्ण है। अब हमारे फेफड़ों के विषय में फिर चर्चा करते हुए हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह कैसी भयानक बात होगी कि एक दिन सुबह हम नींद से जागें और सांस ना ले पाएं, अर्थात सांस लेने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन ही ना हो। हम सब एक ही आशा रखते हैं मित्रों, कि हमारे फेफड़े काम करें और उन्हें ऑक्सीजन मिले। हमारे जन्म से मरण तक अनेक रोग हैं मित्रों जो हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन लेने में प्रभाव डालते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें भी फेफड़ों के रोग हो जाते हैं और वे इसके कारण कुछ ही महीने जी पाते हैं। वे रोगों के साथ ही जन्म लेते हैं। कुछ बच्चे बाल्यकाल में ही दमा के शिकार हो जाते हैं। यद्यपि बच्चों में यह गंभीर रोग है, वे प्राय इससे उभर आते हैं, अर्थात युवावस्था में आने तक वे दमा से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, कोई भी बचपन के बाद दमा का शिकार हो सकता है। अनेक जन हैं जो किशोरावस्था तक दमा से परेशान रहते हैं, परंतु पूर्व विकसित हो जाने पर भी वे स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। यदि बच्चे रोग के साथ जन्म ना लें तो प्राय उन्हें दमा की अपेक्षा अन्य फेफड़ों के रोग होने की संभावना नहीं होती है, परंतु वयस्क भिन्न हैं। अधिकांश वयस्क वर्षों धूम्रपान करने के बाद फेफड़ों के रोग विकसित करते हैं। यह वयस्कों में फेफड़ों के रोग का सबसे बड़ा कारण है। धूम्रपान के कारण फेफड़ों के अनेक रोग हो जाते हैं मित्रों। इससे फेफड़ों का उत्तरोत्तर विनाश होता है, जिससे सुधारना अत्यधिक कठिन है जब तक कि वह व्यक्ति धूम्रपान करना ना छोड़े। मित्रों, फेफड़े भी 30 वर्ष बाद धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं, चाहे वह संसार में किसी भी देश, जाति या लिंग के हों। अब मित्रों, प्रश्न यह है कि फेफड़ों में कार्य क्षमता की कमी आ जाने के बाद क्या मनुष्य फिर से वह क्षमता प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है। धूम्रपान द्वारा कुछ समय बाद की हानि को सुधारा नहीं जा सकता है, तथापि यदि अधिक हानि नहीं पहुंची है तो उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। मित्रों, कुछ लोगों को क्षय रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके द्वारा होने वाली हानि को सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि फेफड़ों को बहुत अधिक हानि पहुंच चुकी है। अब उन्हें उसके साथ ही जीवन निर्वाह करना होगा। मित्रों, एक व्यक्ति है जो 30 वर्षीय है और वो फैक्ट्री में कर्मी था। उसे 5 वर्ष पूर्व क्षय रोग हुआ था। 6 माह उपचार करने के बाद उसका रोग ठीक हो गया था, परंतु क्षय रोग के कारण उसके फेफड़ों का एक भाग ऐसा क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसका सुधारा जाना असंभव था। रोगावस्था में उसे सांस लेने में कठिनाई होती थी और रोग मुक्ति के पश्चात भी उसके फेफड़ों की आंशिक क्षति होने के कारण उसकी सांस सदा फूल जाती थी, जिसके कारण वह काम नहीं कर पाता था और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। फेफड़ों के संक्रमण से कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उसका आप त्याग करें। दूसरा, व्यायाम करें। 20 से 30 मिनट की दैनिक व्यायाम आपके फेफड़ों को अधिक सुचारू रूप से काम करने में सहायता प्रदान करेगी। मित्रों, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध कैसे सुधार सकते हैं। कुछ लोगों के विचार में यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह एक गंभीर प्रश्न है। संत पौलुस द्वारा लिखे गए रोमियो के पत्र में बाइबल कहती है, रोमियो 1 अध्याय उसके 18 से 20 में, जहां पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मित्रों, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यह भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है। मित्रों, इसका अर्थ है कि मनुष्य ने परमेश्वर के सत्य को दुष्टता से दबा दिया है और परिणाम स्वरूप परमेश्वर का प्रकोप उन पर प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानते हुए कुकर्म किए, इसलिए उनके लिए क्षमा नहीं। बाइबल रोमियो उसके 3 अध्याय 23 पद में स्पष्ट कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इफिसुस नगर की कलिसिया को लिखे पत्र में पौलुस इसका उत्तर देता है। इफिसियों 2 अध्याय और 8-9 में इस प्रकार लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। रोमियो उसका 10 अध्याय और 9-10 में बाइबल कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि मेरे साथ आप ये प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया। मैं यह भी मानता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। मैं आपको अपने मन में ग्रहण करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने ये प्रार्थना की है तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप अनंत काल तक राज्य करने वाले प्रभु यीशु की संतान बन गए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।